अब अगला मौजू बहुत क्रिटिकल है। शुक्र वाला मौजू जरा पोलाइट सा था, अब अगला जो है ना ये चुभने वाला है लेकिन सच है। तो दूसरी चीज जो मुसीबतों के आने से पहले अपने आप को हमने बचाना है वो क्या है, नाफरमानी से कुल्ली तौर पे इज्तनाब। कुल क्या आता है, कंप्लीटली, यानी जब हम अल्लाह की नाफरमानियां करते हैं ना तो दूसरे लफ्जों में हम कहते हैं आ बैल मुझे मार, आ मुसीबत मुझे मार। हर नाफरमानी असल में मुसीबतों का एक पैगाम है। आइए पढ़ते हैं, बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है, लेकिन इसको भी मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी अपने लफ्जों में आपके साथ ज्यादा शेयर करूं। पेज नंबर है बुक के हिसाबार से 77, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी से कुली इज्तनाब। यहां आप जुमला देखिएगा, ये अल्लाह की नहीं बल्कि रसूल की नाफरमानी है। तो मुसीबतों के आने से पहले ऐसे काम के जिससे मुसीबत ना आए, पहला काम शुक्र, दूसरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी से मुकम्मल तौर पे बचना ये जरूरी है। दलील क्या है जी, पहली दलील नोट करें सूरत नूर आयत 63, फल यख्सर अल्लज़ीन युखालिफून अमरिही अन तुसीबहुम फितना अन तुसीबहुम फितनतुन अव युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। बस जो लोग नबी सल्लम के हुक्म की मुखालफत करते हैं इनको डरना चाहिए कि इन्हें कोई फितना पहुंचे या इन्हें बहुत दर्दनाक अजाब पहुंचे। जरा नोट करें इस जुमले को, और आयत ही पढ़ के बंदे का दिल कांप जाता है। इस आयत में तो खोल खोल के ये बात लिखी हुई है कि नबी की मुखालफत, सुन्नतों की मुखालफत इंसान के ऊपर अजाब लेकर आती है, और नाफरमानियाँ जितनी ज़्यादा करते जाएंगे उतना अपने ऊपर अजाबों को हम बुलाते जाएंगे। यहाँ लफ्ज़ फितना इस्तेमाल हुआ है, तो फितने से क्या मुराद है? इब्ने अब्बास कहते हैं इससे मुराद कत्ल है, अता कहते हैं जलजले और मुसीबतें, और जाफर कहते हैं बुरे हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जाएंगे और दिलों पर मोहर लगाई जाएगी। लेकिन अलामा शौकानी कहते हैं इसमें सारे ही फितने मौजूद हैं। क्या पता चला कि दुनिया में हम जब भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करते हैं ना तो हम पे मुसीबतें ज़रूर आती हैं। इसके ऊपर आप देखिए कि दलील में एक वाक्या बहुत ही खूबसूरत है कि किस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करने वाले पर दो में से एक या दोनों अजाब ज़रूर आते हैं, यानी या तो उनको कोई मुसीबत पहुँचेगी या उनको कोई रुसवाई आएगी। और इसके लिए हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं, क्या तुम ये कहते हो कि रसूलुल्लाह ने यूं फरमाया और फलाह ने यूं कहा, डरते नहीं कि तुम्हें अजाब दिया जाएगा या दसाया जाएगा? यानी इसको आप ज़रा से बड़े लेवल पे लेते हैं। दीन के नाम पे आप किसी को एक हदीस दिखाते हैं कि ये देखिए ये अल्लाह के नबी की बात लिखी हुई है, बात होती है ना, वो कहते हैं हदीस तो होगी बट हमारे इमाम साहब जो हैं वो कुछ और कहते हैं। ये बात आपने सुनी हुई है, इमाम साहब का फतवा या इमाम साहब का कॉल नबी सल्लम की सही हदीस के मुकाबले में कई लोग पेश करते हैं? बिल्कुल करते हैं। मैं किसी मसलक या किसी खास सोच के नाते से नहीं, लेकिन हदीस की रोशनी में बात करूं, 247 हदीसें तो मैंने खुद एक बुक में पढ़ी हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते हुए रकू में जाते हुए और रकू से उठते हुए रफुल जदैन करते थे, अल्लाह अकबर कह के हाथों का उठाना। 247 हदीसें मौजूद हैं और इससे भी ज़्यादा मौजूद हैं जिसमें बुखारी मुस्लिम से लेकर सारी सिया सित्ता की है। आप लोगों को दिखाएं ये हदीस है, वो कहते हैं ये भी हदीस है, ये भी है, एक नहीं दो नहीं 8-10 हदीसें तो सिर्फ उसमें बुखारी की थी, तो फिर आप क्यों नहीं करते? हाँ नहीं वो है हदीस तो है बट इमाम अबू हनीफा का फतवा था ना कि नहीं करते। ये है ये बात, नबी के वाज़े हुक्म के मुकाबले में किसी के कॉल को मानना ये दुरुस्त नहीं है, इसी को तकलीद कहते हैं। इस वक्त ये इतना हमारा मौजू है लेकिन आपको ये बात बतानी लाजमी है, आज पूरी दुनिया में मुसलमानों पे मुसीबतें क्यों टूट रही हैं? वाज़े हदीसें कुरान और सुन्नत की बातों को छोड़कर आम इंसान जो इंसानों में बड़े आला इंसान थे जो दीन के खिदमतकार थे उनकी तरफ कुछ बातें मंसूब करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़े हदीसों को पीछे कर दिया जाता है। इमाम मालिक का वाक्या सुनिए, इस 81 पेज पे है, इनके बारे में आता है, ये इमाम इब्ने उयैना है, कहते हैं कि मैंने इमाम मालिक की गुफ्तगु सुनी जबकि एक शख्स ने उनकी खिदमत में हाजिर होकर कहा, ए अबू अब्दुल्ला मैं अहराम कहाँ से बांधूँ? ज़ुल्खुलैफा से, जहाँ से रसूलुल्लाह ने अहराम बांधा। इमाम साहब ने जवाब दिया, उसने अर्ज़ किया बिलाशुबा मैं तो मस्जिद नबी में कब्र के पड़ोस से अहराम बांधने का इरादा रखता हूँ। इमाम मालिक बोले, ऐसा ना कर, फ़इन्नी अख्शा अलैहि का फितना, मैं तेरे ऊपर फितने यानी अजाब के आने का डर रखता हूँ। वो शख्स कहने लगे, इसमें फितने की कौन सी बात है, बिला शुबा ये तो चंद मील ही तो हैं जिसमें इजाफे का मैं इरादा करता हूँ। आपको सिनेरियो समझ आ रहा है, मैं अपने लाफ से बताती हूँ। इमाम मालिक के पास एक शख्स आया, कहने लगा, जब मैं मदीना से मक्का की तरफ आऊँ उमरा करने के लिए तो मैं अहराम कहाँ से बांधूँ। तो इमाम मालिक ने कहा कि जुल खुलैफा जगह है, आज भी ये अब्यार अली बोलते हैं, जहाँ बसें रुकती हैं और लोग अहराम बांधते हैं ना, वो जगह है। अब मदीना से निकल के बाद में आती है। तो इन्होंने कहा कि तू जुल खुलैफा से बांध ले। उस शख्स कहने लगा, मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं मस्जिद नबी में नबी की कब्र के करीब से ही बांध लूँ, यानी देर से तो नहीं बांध रहा ना, पहले ही बांध रहा हूँ। तो इमाम मालिक ने कहा कि ऐसा ना करना, मुझे तेरे ऊपर फितने का यानी मुसीबत के आने का खतरा है। तो वो शख्स कहने लगे, इसमें फितने की क्या बात है, मैं चंद मील पहले ही बांध रहा हूँ ना, बाद में तो नहीं बांध रहे। तो इसका जवाब सुन लीजिए इमाम मालिक का, कहते हैं, इससे बड़ा और क्या फितना होगा कि तुम समझो कि तुमने किसी ऐसी फजीलत की बात की तरफ सबकत की है जिसे अल्लाह के नबी ना पा सके। और मैंने अल्लाह ताला को फरमाते सुना है, यही आयत जो भी हम पढ़ रहे हैं, कि चाहिए कि वो लोग जो उनके हुक्म की मुखालफत करते हैं डर जाएं कि इनको कोई फितना पहुंचे और दर्दनाक अजाब आए। बात समझिएगा, एहराम का मसला, मस्जिद नबी की जगह जो है वो ज़ुल्खुलैफा के मुकाम से बड़ी आला है, अक्ल से पूछा जाए तो हरज ही क्या है। आज हमने अपने पूरे दीन का नक्शा बिगाड़ दिया है ये जुमला बोल बोल के, हरज क्या, फर्क क्या पड़ता है। आप किसी को किसी अमल से रोकें, हमें रोकना नहीं है, लेकिन लोग आपसे मसले पूछते हैं कि मिलाद करें, उसमें बाद में सलाम पढ़ें, उसमें खड़े हो जाएं, उसमें ये करें, कुरान पढ़ें, लोग पूछते हैं। तो आप उनसे कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया तो आप भी कर लीजिए, नो प्रॉब्लम, कोई बुरी बात तो नहीं है। तो आपने अगर नहीं किया तो आप ना करें। लोग कहते हैं इसमें हरज ही क्या, हरज क्या, फ़र्क क्या पड़ता है इससे। एक अम्मा थी एक जगह आई, तो बड़ी बुजुर्ग सी खातून है, एक क्लास में आती हैं, तो मेरे पास आ गई, कहती मैंने गलत है दसो, पंजाबी बोल रही थी ठेठ ना। तो उनकी बात का खुलासा क्या था कि मैं खाना पकाती हूँ, फिर मैं उसको अपने मेज़ के ऊपर रखती हूँ, फिर मैं दुआएं पढ़ती हूँ, फिर मैं उस पर फूकती हूँ, इसमें हरज ही क्या है। मुझसे वो कहेंगे खाना ही है ना, और मैं गरीबों को खाना खिलाती हूँ। तो ये मेरी बहू बेटियाँ पता नहीं कहाँ से पढ़ लिख के आ गई हैं, मुझे कहती हैं अम्मा ये नहीं ख़त्म नहीं दिलाते। खैर बात हो गई, मैंने उनको थोड़ा सा समझाया। थोड़ी देर गुजरी तो हम खाना ही खा रहे थे, तो वो घर वाले स्वीट डिश ले आए, तो अम्मा को दी, तो कहती ना ना मैं नहीं खानी, मैंने शुगर है। तो मैं क्या, अम्मा जी खा लो, हरज ही की है, एनएच की हरज है। तो अम्मा जी को बात समझ आ गई, मैंने कहा देखें इस वक्त आप इतनी सी चीनी नहीं खा रही ना कि आपका जिस्म इसको कबूल नहीं करेगा, तो जो अमल आप कर रहे हैं वो अल्लाह और उसका रसूल कबूल नहीं करेगा। कहती आज गल समझ आ रही है। तो कहती अरे हरज क्या, तो आप देखिए कि नबी की बात को टालना ये हरज की बात है। फिर दूसरी मिसाल गज़वे ओहद की है, मैंने पिछले सेशन में भी दी थी कि गज़वे ओहद में जीती हुई जंग हार गए थे मुसलमान, वजह क्या थी सबको याद है ना। आप इस बुक में से पेज 82 से लेकर 83-84 पे ये पूरा वाकया इशारों में लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसको अपने लफ्जों में इसलिए बताती हूँ कि उससे आपको ज्यादा फायदा होगा कि गज़वे ओहद में मुसलमान फतह पा चुके थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 साथियों को अब्दुल्ला बिन जुबैर के साथ एक टीले पे मुकर्रर किया था, जहां से आपको खतरा था कि दुश्मन आएंगे पीछे से। जंग हुई, मुसलमान जीत गए, काफिर चले गए, उनकी औरतें भाग गईं, माले गनीमत मैदान में है। साथी जो थे वो जाके माले गनीमत चुनने लग गए। टीले पे खड़े जो लोग थे वो भी जाके इसी चीज़ के पीछे जाने लग गए। तो जो उनके लीडर थे अब्दुल्ला बिन जुबैर, उन्होंने उनको समझाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कहा था कि तुमने जगह नहीं छोड़नी, परिंदे नोच लें, फतह हो जाए, शिकस्त हो जाए, तुमने इस जगह को नहीं छोड़ना। तो सहाबा ने उस वक्त ये कहा कि अब जंग तो खत्म हो गई है, यानी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई, और सच्ची बात है कि कुछ माल की मोहब्बत थी कि जाएंगे तो अपनी पसंद की चीज़ें उठा लेंगे। हालांकि माल गनीमत के अहकाम तो बदर के बाद आ ही चुके थे, लेकिन इंसान था ना, माँ तो हिब्बून, अल्लाह ने कहा कि जो चीज़ तुम्हें पसंद थी दौलत उसको देकर तुम अल्लाह का हुक्म भूल गए। जू ही वो गए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिर्फ 10 लोग रह गए। दुश्मनों ने पीछे से आके खालिद बिन वलीद के थ्रू हमला किया, उसमें फिर वो 70 लोग मारे गए, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दांत भी जख्मी हुआ और आपकी शहादत की खबर फैल गई, मुसअब बिन उमैर शहीद हो गए। ये एक बहुत ईमान अफरोज वाकया, अभी मैंने पिछले 2 वीक पहले ही जो हमारा रूहुल कुरान कोर्स है उसमें डिटेल से पढ़ाया, तो वो फिर सारी चीज़ें ताज़ा हो गई। एक बात नबी की छोड़ने से जीती हुई फतह शिकस्त में बदल गई। आज हम मुसलमान कैसे जीते, हमारा तो सर से पांव तक नबी की नाफरमानी से जुमा हुआ है। फिर एक तीसरा वाक्या यह कि एक शख्स था, उसको एक दूसरे शख्स ने खाना खाते देखा तो बाएं हाथ से खाना खा रहा है, लेफ्ट हैंड से। कहने लगे कुल भी यमीनिक, दाएं हाथ से खाओ। उसने कहा लास्तती हूँ, मैं नहीं खा सकता। तकबर से कहा, तो उन्होंने कहा लस्तता था। अल्लाह के नबी ने कहा तू अब खा भी नहीं सकेगा। और रावी कहते हैं कि हमने नहीं देखा उसके बाद वो सीधा हाथ ऊपर उठा सका, अल्लाह ने उसके सीधे हाथ पे फालिज डाल दिया। ये नबी की नाफरमानी का नुकसान है। मैं तो हैरान होती हूँ कि आज हम मुसलमान जी कैसे रहे हैं। खुशियों के नाम पे नाफरमानी, शादियों के नाम पे नाफरमानी। और मैं सोचती हूँ ये बातें पढ़ते हुए जो आज हम कर रहे हैं, ये हकीकी बात है कि क्या आज हम खुद नहीं मौके दे रहे कि हमारे घर टूटे, हमारे बच्चे बीमार हों। अच्छी खासी शादी हुई, एक सिस्टर है बहुत प्यारी साथी है हमारी, कहने लगी ऐसे हुआ शादी की बच्चे की, बिल्कुल ठीक था बच्चा, और उसके बाद एक दो महीने के बाद एकदम खड़ा खड़ा गिर जाता है, अब चल ही नहीं सकता, पाँव में दर्द है, बीमारी है, समझ ही नहीं आ रहा, डॉक्टरों को कोई बीमारी नहीं दिख रही। फिर खुद ही कहती हैं कि मुझे लगता है कि नज़र लग गई है, वो चांद सूरज की जोड़ी थी और दुल्हन भी इतनी सजी हुई थी, दूल्हा भी शहजादा लग रहा था, तो मुझे लगता है नज़र लग गई है। देखिए नज़र लगे ना लगे, लेकिन नाफरमानी लग गई है। आप अपनी खुशियों के मौके पे जितना एक्सपोजर करेंगे उतनी नजरें लगेंगी। आज क्यों शादियां नहीं बसती, इसकी बहुत सारी वजूहत और भी हैं। हमारी तरबियत में बातें हैं, बच्चियों में सब्र नहीं है, मर्दों में मर्दानगी कम है, लेकिन एक बहुत बड़ी वजह यह है कि उनकी खुशियों के मौके पे हम अल्लाह के रसूल की नाफरमानी करते हैं। कितने लोग इससे इत्तफाक करते हैं? सर पे तो कुरान रख देते हैं दुल्हन के, तो सर से पांव तक वो उस कुरान के खिलाफ है। तो क्या हम आज खुद नहीं मौका देते? मुझे अभी किसी से बात थी मेरी, यानी ऐसे मैसेज थे किसी के, तो मैं उसके ऊपर भी यही बात सोच रही थी। काश काश, अच्छे रंग में कह रही हूँ, वैसे तो नहीं कहना चाहिए, यानी आई विश के मानों में कहूंगी कि हम मुसलमान अपनी शादियां और अपनी खुशियां सुन्नत के खिलाफ करना छोड़ दें। आप देखें हमारे बच्चों के घर बसने लग जाएंगे। आप सोचिए, आप 2 घंटे का डीजे प्रोग्राम रखते हैं, डीजे नाच रहा, फुदक रहा, घूम रहा, 2 घंटे लगे ना, आपने उसको 2,000 यूरो दे दिए होंगे, शायद इतने ही देते होंगे या कम या ज्यादा, कुछ भी देते होंगे। ये 2,000 यूरो भी आपके लिए बड़ी बात नहीं है। फन और एंटरटेनमेंट के नाम पे आप 2 घंटे भी लोगों के ले लेते हैं, लोग तो खुशी खुशी आपको 4-5 घंटे भी शादी में दे देंगे, बड़ी बात नहीं है। बट ये 2 घंटे और 2,000 यूरो बाद में मुसीबतों का पहाड़ बन के आप पे टूटे, चोट आ जाए, एक्सीडेंट हो जाए, मियां बीवी की लड़ाई हो जाए, मर्द की नजरें कहीं और लग जाएं, आने वाली बहू आपके बेटे को पसंद ना करे, आपको हैंडीकैप पोता मिल जाए उसके जवाब में, खुल के बात कीजिए, मुसीबतें इन रूप में आती हैं। कोई चोरी कर देगा, आपके बेटे की जॉब चली जा सकती है, आपके बेटे का पाँव टूट सकता है, हादसा हो सकता है, आपकी बहू अंधी हो सकती है। क्या आपको ये 2,000 और 2 घंटे में ये सौदा मंजूर है? मेरा हाल, मैंने इतने कड़वे जुमले कभी नहीं बोले, कोशिश कर रही हूँ प्यार से बोलूँ, बट इट्स बिटर ट्रुथ। आज हम पैसे लगा के, वक्त लगा के, मेहनत लगा के, हाल से जाके, खराबियां करके, अल्लाह की कसम अपने बच्चों के घर बिगाड़ने का पूरा इंतजाम करते हैं। कि मैं नहीं कह रही, आए था आपके सामने फल यखज़ुरिल लजीना, नबी की नाफरमानी के बाद बरकत आ सकती ही नहीं है, दिल उचाट हो जाते हैं, सब कुछ है, मर्द का दिल बीवी में नहीं आ रहा, बीवी का दिल मर्द में नहीं आ रहा। वो कहती है यकीन करें, मैं आप लोगों से भुगतती हूँ इन चीजों को, आज के दौर का जो फितना है ना, वो अनमैरिड लड़के लड़कियों के मसाइल नहीं है, वो तो एक्सेप्टेड है, अब पहले एक्सपेक्टेड था, अब एक्सेप्टेड है, ये तो किसी से करेंगे, एक को तो पसंद करेंगे, फिर उससे शादी हुई तो हो गई, नहीं हुई तो ना सी। इस वक्त जो प्रॉब्लम है ना, वो मैरिड रिश्तों का प्रॉब्लम है, उसकी बीवी उसका मर्द, उसका मर्द उसकी बीवी। मैं ऐसे जोड़े जानती हूँ, एक घर में ऊपर नीचे रहने वाला मामला, जैसे आपको तो यूरोप में आम है, छोटे घर है, एक कपल नीचे रह रहा है और एक ऊपर रह रहा है, 2-3 साल के अंदर आप पता क्या हुआ है, वो उसको तलाक दे के वो उसको दे, क्रिस क्रॉस हो गया। लेकिन दूसरे एक ने मर्द ने खुदकुशी कर ली, कुछ ऐसी खराबियां आई, दूसरे मर्द के साथ उसकी शादी होगी, यानी कल तक जो पड़ोसन थी वो आज उसकी सौकन बन गई, उसको तलाक दे दी, कहा उससे कर लो, उसने कहा मैं ये रसवाई नहीं बर्दाश्त कर सकता, वो मर गया, खुदकुशी कर ली। ये आपस के ताल्लुकात है, साथ जॉब करने वालों के ताल्लुकात, साथ बैठने वालों के ताल्लुकात, ये मुखालफतों का नतीजा है। आप पर्दे की हदूद को पामाल करके जॉब करेंगे, बेटियां आपकी, बेटे अलग कट्ठे बैठेंगे, जरूर हदें टूटेंगी। ये सिर्फ शादी के 2 घंटे 4 नहीं होते, हमारा तो पूरा लाइफ स्पैम रसूल के खिलाफ है। मैं कहती हूँ फिर भी हम अल्लाह की रहमत से बचे हुए, तो अल्लाह ताला कहते हैं नबी की नाफरमानी से बच जाओ। फिर एक तीसरा वाक्या इन्होंने पेज 90 पे दिया, जखीरा अंदोजी का अंदाज है, मैं इसको भी अपने अंदाज से बता सकती हूँ आपको। यानी हजरत उस्मान का एक गुलाम था जिसको आजाद कर चुके थे, उसका नाम फरूख था, तो हजरत उमर जो थे मस्जिद की तरफ गए, अभी उस वक्त ये अमीरुल मोमिनीन थे, कहने लगे ये गल्ला कैसा है? कहने लगे ये हमारे पास लाया गया। उन्होंने कहा कि अल्लाह तुम्हें इसमें बरकत दे दे। तो किसी शख्स ने शिकायत लगा दी कि ये अनाज यानी गंदम वगैरह इसने जखीरा कर ली है, हालांकि मुसलमानों को इसकी जरूरत है। उमर को जब ये बात पता चली तो आपने कहा इसको किसने की है? उस शख्स का नाम दिया गया कि फलां ने दी। कहा जाओ उसको बुला कर लो। जब वो गुलाम आया तो उन्होंने कहा कि तुमने ये मुसलमानों के इस्तेमाल की चीजों को क्यों किया ऐसे? उस शख्स ने क्या कहा, अब जरा सुनिए उसका जरा लाओबाली अंदाज है। कहते मेरा माल है, मैंने खरीदा है, मेरे पैसे थे, मैं इसको खरीदूं मैं इसको बेचूं मेरी मर्जी। बात समझ गए? हजरत उमर के सामने ये वाक्य आ रहा है। हजरत उमर ने कहा कि मैं तुम्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात बता रहा हूं कि जिसने मुसलमानों के खाने पीने की चीजों को जमा कर लिया और ना दी तो वो नबी की मुखालफत कर रहा है, और तुम कह रहे हो कि तुम ऐसा करोगे। और कहते हैं कि उसके बाद हमने उस शख्स को कोढ़ के मर्ज में मुबतला होता हुआ देखा। पहले दौर में आम होता है ये भी जो वाक्य, और शायद मैंने ये बोला कि नहीं, जो खाना खाने वाला वही के वो दाएं हाथ से कहा मैं तो खाऊंगा बाएं हाथ से, और सहाबी कहते फिर हमने उसका दाया हाथ कभी उठता देखा ही नहीं। ये सरे आम मुखालफत नबी की जो होती थी उसके ऊपर लोग जो थे वो फौरन ही जवाब देते। इसी तरह एक चौथा वाक्य पेज 92 पे है, मस्जिद में अजान होने पे निकलना मना है। आपको पता है कि ये मस्जिद है ना, अगर यहाँ मगरिब की अजान हो जाती है तो मर्दों में, औरतों का मामला और होता है, उनकी कोई मजबूरी हो सकती है कुछ भी है, कोई मर्द मस्जिद से निकल के नहीं जा सकता। या तो ये कि वो कहीं कोई गाड़ी से कोई चीज लेने जा रहा है वापस आएगा, या नमाज पढ़ेगा, ये बहुत बड़ी बात है। इसी तरह से एक शख्स था तो मस्जिद में आया, अजान हुई तो उठ के जाने लगा। किसी ने उसको यह हदीस सुना दी कि देखो तुम नबी सल्लम की बात सुन लो कि मस्जिद में अजान हो गई, अब नमाज पढ़ के सुनो। उसने कहा मैं तो जा रहा हूँ, बाहर गया ऊँटनी पे बैठा, उसकी ऊँटनी जो थी वो उसने उसको गिराया और उसकी रान टूट गई, हड्डी टूट गई। ये सरेआम मुखालफत की बात थी। तो सारी बात का फिर खुलासा क्या निकला, ये दो बातें हमने आज पढ़ी हैं। एक क्या पढ़ी है कि शुक्र करने से मुसीबतें कम हो जाती हैं, और दूसरी बात ये है कि नबी की नाफरमानियों के साथ मुसीबतें आती हैं। कल इसके आगे और भी चीज़ें चलती जाएंगी। मुझे लगता है कि हम इस सारे मौजू को पढ़ने के बाद जिस नतीजे पे पहुंचेंगे वो क्या है कि रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन, कि हमारे रब हमने खुद अपने नफ्सों पे जुल्म किया है, और अगर कोई बात समझ आएगी तो वो ये आएगी कि ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व तूबु इलैक, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन। आप देखते जाएंगे कि सारी बातों के बाद गलती हमें अक्सर अपनी दिखेगी। बहुत सारे लोग होते हैं ना, आम मामलात में भी इसको आप देख सकती हैं कि जब हम किसी के सामने कोई बात पेश करते हैं ना तो अमूमन कसूर अपना निकलता है। जब लोगों की काउंसलिंग होती है ना तो बीवी की भी बात मैं सुनती हूँ, मर्द की भी सुननी पड़ती है। जब हम सुनते हैं यकीन करें कि जो बंदा क्लेम करने के लिए आता है ना 80% कसूर उसका होता है, लेकिन उसको खुद नहीं पता चल रहा होता, लेकिन फिर जब बात खुलती है तो उनको अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ जाती है। तो अल्लाह ताला से ये दुआ करेंगे कि आज उम्मत को नाफरमानियों से बचाएं। और मैं अक्सर सोचती हूँ, ये बात आज आखिरी टॉपिक के नाते से फिर दिल में आ रही है, कि अक्सर हम ये लोग सोचते हैं ना बात के फर्क क्या पड़ता है, आखरत है ना, मतलब हम सोचते हैं कि अगर हम गुनाह करेंगे ना तो हमारी आखरत खराब होगी और नेकी करेंगे तो आखरत अच्छी होगी, यही तसव्वुर है ना। आज आपने ये बात पढ़ ली है कि गुनाहों से दुनिया खराब होती है, गुनाहों से नाफरमानी होती है, और दिल भी अल्लाह के हाथ में है, इज्जत मोहब्बत अल्लाह की है, अल्लाह का हक बनता है कि मुझे एक चीज अच्छी नहीं लगती, मेरी सगी बहन वो काम कर रही है, मेरा सगा भाई वो कर रहा है, मेरा भांजा भतीजा कर रहा है, मेरा प्यार उसका अपने साथ, मैं उसको प्यार भी करूंगी, मैं उसे कहूंगी भी, लेकिन मैं उसकी उस बात को नहीं मानूंगी। अगर हम मुसलमानों को ये जज्बाती धचके देने आ गए, 10 साल में छुटती चीज लोग 1 साल में छोड़ देंगे कि बला में डालो ऐसे डीजे को जिसकी वजह से ना मेरी खाला आ रही है, ना मामू आ रहे हैं, ना चचा आ रहे हैं, ना मेरी फुफ्फू आ रही है, अगली शादी ठीक हो जाएगी। ये जो गूंगे शैतान बन के हम बैठ जाते हैं और बाद में बातें भी करते हैं, घर आके भी गीबते, जाकर भी गीबते, और वहां बेकार बनते हैं सिर्फ इस वजह से कि इनको खुश करना है, वो खुश नहीं होंगे, या हेर और या देर। आगे इंशाल्लाह कल के मौजू में 2-3 चीजें इससे भी ज्यादा क्लियर आने वाली हैं। अल्लाह ताला हमारे वक्त में बरकत अता फरमाए। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।